गुरु बिनु भवनि भीतरहि न कोई, यो बिरंचि शंकर सम होई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस संसार की संपूर्ण प्रकार की व्याधियों के हरण में समर्थ सदगुरु ही होता है, क्योंकि गुरु शब्द ही गिरति गिलति शिष्यस्य अज्ञानम इति गुरुः। जो शिष्य के अज्ञान को पान कर जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु स्वरूप में हमारे मध्य में विराजमान श्री रामदास जी महाराज आज के कथा के रसिक वृंद भक्तगण, गुरु के वचन में विश्वास करने से व्यक्ति को सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु कभी यदि कठोर वचन बोलता है तो उस कठोर वचन में भी शिष्य का कल्याण निहित होता है। जैसे औषधि कड़वी होती है और वह रोग का निदान करती है, मीठी औषधि और रोग प्रदान करती है, जबकि कड़वी औषधि निदान करती है। वैसे ही जैसे खान से निकला हुआ सोना जब तक घिसा नहीं जाता है, रगड़ा नहीं जाता है, तपाया नहीं जाता है, तब तक उसमें चमक नहीं आती है, और जब तक चमक नहीं आती है तब तक वो जाकर के राजाओं के मुकुट पर शोभा नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति गुरु का सेवन नहीं करता है, गुरु के जो अपमानित वचनों के द्वारा, गुरु के तर्जन के द्वारा, ताड़न के द्वारा परिष्कृत नहीं होता है, उस व्यक्ति की सदगति जल्दी होती नहीं है। इसलिए गुरु यदि कठोर वचन भी कहे तो उसे श्रवण करके अपने आप में सुधार लेना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बड़े दुर्लभ है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो वाणी हितकर भी हो और मिठाई मीठी हो ऐसा बड़ी ही दुर्लभ है। घी को निकालने के लिए नींबू की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए गुरु की जो वाणी है उसको बिना सुने व्यक्ति का कल्याण होता नहीं है, इसलिए उसे सहन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, यदि कड़वी हो तो भी। तो ऐसे गुरु जो होते हैं वो शिष्य के अज्ञान को पान कर जाते हैं, शिष्य के पाप को पान करने से गुरु होता है। एक दीक्षा देने से शिष्य के जितने पाप है वह गुरु ग्रहण कर लेता है और अपना तेज वहां प्रदान करता है। इसलिए कहा दीक्षा शब्द में दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशु वासना, ज्ञान का सद्भाव गुरु प्रदान करता है और पशुओं की जैसे काम क्रोध मद लोभ रूपी जो वासनाएं हैं उसका क्षय हो जाता है, इसलिए उसका नाम दीक्षा कहा। तो ऐसी जो दीक्षा होती है वह भव की औषधि है। व्यक्ति के स्वस्वरूप में स्थिति ही मोक्ष होता है। हम जान जाएं कि कहाँ है तो तदनुरूप कार्य करने लगे, और हमें पता नहीं कि हम कहाँ हैं तो करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो पुराण है, इस पुराण में जो ब्रह्म पुराण कहा, वह ब्रह्म पुराण की नाम की सार्थकता यह तभी संभव है जब ब्रह्म कर्म संपादित हो जाए। ब्रह्म कर्म क्या है? अध्ययन, स्वाध्याय, जप, नाम जप, वेदादि का पाठ, संकीर्तन, देवता को निमित्त मानकर आहुतियां, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा मतलब देवताओं के लिए आहुति, स्वधा मतलब इतरों के लिए आहुति होती है। और जिस घर में ये नहीं होता ब्रह्मकर्म, वो घर श्मशान के तुल्य है, क्योंकि वहां रोज हजारों जीवों की हिंसा होती है। झाड़ू लगाने से हिंसा होती है, वो आप मिक्सर रखते हैं उससे हिंसा होती है, बिस्तर रखते हैं उससे हिंसा होती है, पानी रखने का जो स्थान है टंकी इत्यादि उससे भी हिंसा होती है, भोजन पकाते हैं उसके लिए जो चूल्हे इत्यादि है उसके अंदर भी जीव मर जाते हैं। तो हिंसा होने से स्मशान में जैसे हिंसा होती है वैसे घर में यदि हिंसा होती हो तो उस घर को भी हम स्मशान ही कहेंगे। इसलिए कहा नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि नबी प्रपादो दक कर दमानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जहां पर वेद शास्त्र पढ़ने वालों के पैर प्रक्षालित न किए जाते हो ब्राह्मणों के, जहां पर वेद शास्त्र के ध्वनि न सुनने को मिलती है महीने में, होना तो रोज चाहिए, न हो तो महीने में एक दिन दो दिन तीन दिन। न वेद शास्त्र ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, वहां आहुतियां न दी जाती हो स्वाहा स्वाहा करके, पूर्णिमा इत्यादि को संक्रांति को सत्यनारायण की कथा सही, और वहां आहुति घर में देना चाहिए। और स्वधा मतलब कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पितरों को निमित्त मान करके पिंडदान ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण का पद प्रक्षालन, जो वेद आदि शास्त्र पढ़ता हो उस ब्राह्मण में निष्ठा रख करके उसका पैर छालन पैर धोना, धोने से जिसके घर में कीचड़ न हो जाता हो। अब तो फर्श आ गया लेकिन अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण आएगा तो कुछ सदुपदेश करेगा, हो सकता है आपको वो खराब लगे लेकिन फिर भी वो हित की बात करके जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा ब्राह्मण नहीं करता तो वो भी ब्रह्म राक्षस होता है, लिखा है इसी में ब्रह्म राक्षस की कथा आई है। यदि ब्राह्मण सविधि यज्ञ न करे तो वह ब्रह्म राक्षस होता है, और यह जवाबदारी आपकी नहीं है, आपको उसमें अच्छी भावना रखनी है। हमें ब्राह्मण का दोष नहीं देखना है, ब्राह्मण अपने दोष से अपने चित होगा, हमें अपना सत्कार्य करना है, क्योंकि दोष देखने चलेंगे तो हम भी दोषी हो जाएंगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढाया अपना मुझसो बुरा न को। इसलिए बुराई नहीं देखनी चाहिए, बुराई देखने से हम भी बुरे हो जाते हैं और बुराई ही दिखने लगती है, इसलिए हमें अच्छाई देखना चाहिए। तो हमें ब्राह्मण के प्रति अपनी सद्भावना रख करके उसमें ईश्वर का ध्यान करके उसे दान देना है, और उससे बुला करके स्वाहा स्वधाकार इत्यादि अपने घर में कराना चाहिए। हमारा शरीर जिस माता पिता से मिला है वही माता पिता यदि नहीं होते तो इस शरीर का निर्माण कहां संभव था। 9 महीने किसने गर्भ में रखा, शुरू से लेकर के आज तक हमको हमारा परिचय किससे होता है, उसी पिता और माता से होता है, और आगे चल करके हमारा परिचय गुरु से होता है, हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु भाई होने से जितना संसार है एक गुरु के शिष्य होने से सब गुरु भाई हो जाते हैं, तो गुरु के द्वारा और बड़ा परिचय मिलता है। तो माता पिता और गुरु जिसने तीन की सेवा किया उसने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मनु महाराज का वचन है। मनु मतलब जो मनु और शत्रुपा जिनसे यह सृष्टि चली, जिन्होंने एक मनमंत्र तक 71 दिव्य वर्षों तक जिन्होंने धर्म के बल पर सृष्टि का राज किया। आज के राजा तो 5 साल भी नहीं रह पाते हैं, तकलीफ यह है क्योंकि उनका धर्म आश्रय नहीं है। इसलिए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आता है, किसी व्यक्ति की राजगति दिलाने के लिए नहीं आता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म से धर्म की रक्षा हम थोड़ा सा करते हैं तो वह धर्म हमारी संपूर्ण प्रकार से रक्षा करता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का थोड़ा भी अंश जिसका हम पालन करते हैं तो महान भय से हमारी रक्षा करता है। और वह धर्म का तत्व गुहा में निहित है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथाः, जो महाजन लोग हैं जो महापुरुष हैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग से ही चलने से हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि धर्माधर्म विवेक किसी सामान्य व्यक्ति के बुद्धि का उपज नहीं है। ये तो जो शास्त्र निर्धारित करते हैं, जो महापुरुषों का आचरण है उसके द्वारा जाना जाता है। उसके साधन क्या है ज्ञान के, यह बतलाया। श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब आचार ग्रंथ, मनुस्मृति इत्यादि। सदाचार, जो सज्जनों का आचार है, गुरुदेवों का आचार है। स्वस्य च प्रियम आत्मनः, और जो आत्मा के अनुकूल है। आत्मा मतलब शरीर नहीं, आत्म जो आत्मा जो कहती है उसके लिए जो है ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञानानुकूल। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः, एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। यह साक्षात धर्म लक्षण है और इस लक्षण के अनुसार चलना चाहिए। धृति, किसी चीज को धारण करना। धारण करने का अर्थ है कि अच्छाई के समय धारण करो, बुराई के समय निकाल दो, ऐसा भी नहीं है। जिसको स्वीकारा उसको अंत तक पालन करना चाहिए, नहीं तो ये वस्तु अच्छी है, इसके सद्गुण को ले लिया और जब इस पर विपत्ति आई तो इसकी रक्षा नहीं किया, चले जाओ, स्वार्थ सिद्ध हो गया, तो वो धृति नहीं हुई, वो वंचना हुई। क्षमा, आपके प्रति किसी का अपराध है, यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपके प्रति वो विनित हो जाता है कि नहीं, इसने हमको क्षमा किया। दम, इंद्रियों को दमन करना, अपने बश में रखना। धृतिक्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता। धीरता, सत्य बोलना। अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, ये दस जो है धर्म के लक्षण है, नेत्र बतलाए गए हैं। और उस धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर आता है, तो यदि इसको हम धारण करें तो हम भी धार्मिक कहलाने लगेंगे। धर्मम चरतीति धार्मिकः, जो धर्म का पालन करे उसे हम धार्मिक कहते हैं। इसी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हरिश्चंद्र ने अपने आप को चांडाल के घर बेच दिया, यह वह भारतवर्ष है। वहां उनका वर्णाश्रम धर्म भी उन्हें बाधित नहीं किया सत्य को बचाने के लिए। तो ऐसा जो सत्य है उस सत्य का पालन हमारे द्वारा होना चाहिए। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। इसी सत्य व्रत पर आधारित आज एक कथा मैं आपको बतलाऊंगा, जिस कथा में के पात्र एक चांडाल और एक ब्रह्म राक्षस दोनों ही हैं और दोनों की बड़ी ही रोचक कथा है। उसके बाद सांख्य योग का भी निरूपण आता है। कुल 245 अध्याय है इस पुराण में, तो 245 अध्याय में से अभी हमने 130 अध्यायों का पाठ किया है। रोज 20 से 22 अध्याय का मैं पाठ करता हूं, 2.5 घंटे लगते हैं। उसमें बीच बीच में बहुत सारी गहन बातें होती है जिसको मैं समझता हूं, लेकिन यहां थोड़ा बहुत जो कथा के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने की मैं चेष्टा करता हूं। मैं कथाकार तो हूं नहीं, लेकिन महाराज जी की कृपा है तो कुछ बोल लेता हूं। इसलिए वो जो ब्रह्म राक्षस की कथा है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो अभिप्राय यह है कि संसार में आए हुए सभी जीव किसी न किसी कर्म में बंधे हुए हैं, और जो कर्म का बंधन है यह व्यक्ति कर्म करके ही उससे निवृत्त हो सकता है, अन्यथा उससे छूट नहीं सकता है। और कर्म का बंधन ही संसार है, और यदि कर्म का बंधन नहीं है, आपको फलेच्छा नहीं है, तो आप संसार से मुक्त हो गए। हमारी कोई न कोई इच्छा है, उस इच्छा को रख करके ही हम कर्म करते हैं, और वह कर्म का फल जब हमें मिल जाता है उस कर्म को हम छोड़ देते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा पर चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म आ जाता है स्टेशन, तो ऑटो रिक्शा छोड़ देते हैं। उसी तरह से व्यक्ति की जो इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य करता है और कार्य पूरा हो जाता है, फल प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको छोड़ देता है साधन को। तो ये संसार में भी जो है कर्म के जो बंधन है वो हमें बाधित करके रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं ये क्या है, इतना सब बांध रखा है, सिखा बांधते हो, चोटी बांधते हो, धोती बांधते हो। अरे भाई, बंधन में जो सुख है वह जो है छूटने में सुख नहीं है। जरा पतंग से पूछो जिसकी डोरी कट गई है वो कहां जाके गिरने वाली है। जरा अपने कपड़े से पूछो जो तेरा शरीर छोड़ दिया है, कैसे पकड़ के खींच खींच के ढक रहे हो, निर्वस्त्र हो जा रहे हो, वहां उससे पूछो। तो बंधन में जो सुख है ना, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, ये भक्ति का बंधन है। जो बंधन में सुख है वह जो है बंधन मुक्त होने में सुख नहीं है। एक बार की घटना घटी, ये कथा तो आपसे कहने वाला हूं, सामान्य शिव जी का और उनका भगवान विष्णु का संवाद रहा। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के चले आ रहे थे। शिव जी ने क्या किया, दिगंबर भगवान शिव भोलेनाथ रहने वाले हैं, झटपट अपना वो निकाला पाखांबर और लपेट लिया कि भगवान विष्णु आ रहे हैं, ऐसे नंग दड़ंग रहना ठीक नहीं है। सांपों को लेकर के लपेट लिया, वो पाखांबर लपेटा और सांपों से उसको बांध डाला। भगवान विष्णु जैसे आए उनका गरुड़ वाहन देख करके सर्प जो है धीरे से सड़क के नीचे चल दिया। अब वो जो बंधन है वो बंधन खुल रहा है तो व्यक्ति निर्वस्त्र हो रहा है। तो बंधन हमारे मर्यादा का प्रतीक है और जो मर्यादित व्यक्ति है उसी से समाज की रक्षा होती है। वस्त्र जो है मर्यादा का प्रतीक है और वस्त्र हटेगा हम निर्लज्ज हो जाएंगे, समाज निर्लज्ज हो जाएगा। और निर्लज्जाश्च कुलांगनाः, यदि लज्जा हमारी चली जाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल है इस समाज की रक्षा कर पाना। यदि राजा संतोषी हो जाए तो उसके राज्य नहीं पढ़ेंगे। और यदि गणिका लज्जावती हो जाए तो अपने धर्म को पालन नहीं कर पाएगी। और यदि कुल की स्त्री निर्लज्ज हो जाए तो वह कुल की मर्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायन्ते वर्ण शंकराः संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च। यदि स्त्री दुष्ट हो जाए तो होने वाली संतति का यह निर्धारण नहीं होगा कि यह किसकी है और कौन सी जाति है, इसका कर्म क्या है। कलयुग में लोग कहते हैं हम जाति नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। आम है उसमें जाति है, जो बेर बेर का फल है उसमें जाति है, और करेला है उसमें जाति है ना। हमारे शर्ट में, हमारे कपड़ों में भी कपड़ों की जाति है। तो यदि जाति आप हटा दोगे तो फिर आप परिचय ही नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सिष्टम गुणकर्म भी।